بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تیسرے اور چوتھے پارے کی آج تلاوت کی گئی ہے. پارے تین کے شروع میں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت آیت الکرسی ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت اور سب سے عظیم آیت آیت الکرسی بیان کی گئی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پورا تعارف فرمایا ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو خود سے زندہ ہے اور ساری دنیا کو قائم رکھتا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اسی کے ملکیت میں ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے، وہ جانتا ہے لوگوں کے سارے سامنے والے احوال کو اور پیچھے کے احوال کو، آئندہ ہونے والے حالات کو، پیچھے ہوئے جو کچھ احوال ان کو. ولا یحیطون، اس کے علم کا مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی ذرہ برابر بھی، مگر جتنا اللہ دے اتنا ہی. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، وسیع ہے، گھیری ہوئی ہے، اور آسمان اور زمین کی حفاظت اس کو بھاری نہیں پڑتی ہے، مشکل میں نہیں ڈالتی ہے، اور وہی ذات بلند و بالا ہے، عظمت والی ہے. اس کا یہ ترجمہ ہے. ایک ایک جملے کا، ایک ایک لفظ کا الگ الگ تشریح ہے پھر اس کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حی ہونے کا کیا مطلب ہے، قیوم ہونے کا کیا مطلب ہے، اللہ کا علم کتنا ہے، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ملکیت اللہ کی آسمان و زمین کی، سفارش اللہ کے پاس کسی کی نہیں چل سکتی، وغیرہ وغیرہ. آیت الکرسی اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ یہ بندوں کے مال و جان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اس میں لی گئی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ رات کے وقت میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جان و مال کی حفاظت فرماتے ہیں. تو بالخصوص بڑی اہم آیت ہے، اس کا اہتمام ہر بچے اور ہر لڑکی کو، ہر لڑکے کو، ہر آدمی کو، نوجوان کو، بوڑھے کو، سب کو کرنا چاہیے. اور بلکہ بزرگان دین کے معمولات میں سے یہ بھی ہے کہ جب بچہ بولنے لگتا ہے تو قرآن پاک کی چونکہ سب سے عظیم آیت ہے، اس لیے اس کو یہ آیت یاد دلائی جاتی ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد میں حق تعالی شانہ نے دو اہم واقعات کو بیان فرمایا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے زندہ کرنے اور مردہ کرنے کی بات، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشہور واقعہ ہے، نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گئے، جا کر کے تقریر کی، تو نمرود نے کہا کہ بھائی تمہارا پروردگار کیا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، زندگی اور موت میرے پروردگار کے اختیار میں ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. نمرود نے یا اس وقت کے بادشاہ نے جیل میں سے دو افراد کو بلایا، ایک کے بارے میں یہ طے ہو گیا تھا کہ اس کو چھوڑ دینا ہے، جیل سے خلاصی ہونے والی ہے، اور ایک کے بارے میں یہ طے ہو گیا تھا کہ اس کو پھانسی ہونے والی ہے. تو جس کو پھانسی ہونے والی تھی اس کو اس نے چھوڑ دیا، دیکھ میں بھی زندہ کر دیتا ہوں، اور جس کو قید ہونے والی، جس کو جیل سے رہا کرنا تھا، اس نے پھانسی پر چڑھا دیا، کہنے لگا کہ موت میرے اختیار میں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، موت دینے اور زندگی دینے کا مطلب یہ مارنا، قتل کرنا یہ سمجھ رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب زندگی اور موت کا مطلب یہ ہے کہ باضابطہ روح ڈال کر کے حیات دینا، اور موت کا مطلب یہ ہے کہ روح کو ختم کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیلنج پیش کیا کہ روزانہ میرا پروردگار سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، تم مغرب سے لے آ کے بتاؤ، ایک دن مغرب سے لا لو. فبوہیت الذی کفر، پوری مجلس میں، بھری مجلس میں کوئی جواب نہیں دے سکا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. مفسرین نے ایک عجیب نقطہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر نمرود یہ بولتا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ تم لے کے آ کے بتاؤ کہ تمہارا پروردگار مشرق سے روزانہ لاتا ہے، کل کے مغرب سے لے کے رہا، تو معجزہ ہو سکتا تھا، اس وجہ سے بھی ڈر گیا وہ، پوچھا نہیں. اور دوسرے کہ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ ناحق ہوتے ہیں، باطل ہوتے ہیں، ان کی عقل کو معاف کر دیتے ہیں، عقل نہیں چلتی، کام نہیں کرتی. تو یہاں پر بھی مبہوت کیا ہو گیا، کافر جو ہے مبہوت ہو گیا، پریشان ہو کے رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. دوسرا ایک اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی اس کی نسبت کی جاتی ہے، وہ یہ کہ ایک بستی کے پاس سے حضرت عزیر کا گزر ہوا. بستی پوری ویران پڑی ہوئی ہے، گھر پورے ٹوٹے پھوٹے ہیں، کہنے لگے کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا. بطور تعجب کے انہوں نے اللہ سے سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیند سلا دی 100 سال تک. اٹھے، اٹھنے کے بعد میں آپس میں پوچھنے لگے اپنے جو بھی احوال سامنے آس پاس والے لوگ تھے कितना सोए तुम, कितना सोए, कितना सोए। उन्होंने कहा कि एक आध दिन सोए होंगे या दिन का कुछ हिस्सा सो के उठे। कहने लगे बल लबिथ तम या तामिन, 100 साल पूरे गुजर गए हैं। फंजुर इला तामी के व शराबी के लमिया तसन्ना, खाने को देखो सड़ा नहीं है और गधे को देखो पूरी हड्डियाँ हो गया है। अल्लाह ताला ने एक कुदरत को रखा कि खाना अभी नहीं सड़ा, 100 साल तक अल्लाह ने खाने को महफूज रखा और 100 साल तक गधे को पूरा मलियामेट कर दिया, हड्डियाँ वो सीधा कर दिया उसको। वंजूर इले अज़ामी के फ़नून शिजुहा थुम्मा नक्सूहा लहमा, अब देखो इस गधे की हड्डियों को कैसे हम उसको दोबारा उठाते हैं, फिर उसके ऊपर गोश्त कैसे चढ़ाते हैं। अल्लाह ताला ने पूरा उसको जारी करके ज़िंदा करके बता दिया। फलम्मा तबगियन लहू, जब अल्लाह तबारक व ताला ने उस गधे को ज़िंदा कर दिया, कहने लगे قال اعلم ان الله على كل شيء قدير, जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत थे। पूरी दुनिया ऐसे ही उठने वाली है, जैसे ये गधा उठा है ऐसे ही पूरी दुनिया दोबारा उठने वाली है। इसी तरीके से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़िया भी, अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा कैसे करते हैं। हज़रत इब्राहिम ने कहा कि परवरदिगार यकीन तो है लेकिन इत्मीनान के लिए और आपकी कुदरत को देखने के लिए सवाल करता हूँ कि आप मुर्दों को कैसा ज़िंदा करते हैं। अल्लाह ताला ने पूछा अवलम तोमिन, या ईमान नहीं है? कहने लगे ईमान है, लियतमईन्ना कल्बी, इत्मीनान कल्ब के लिए, मज़ीद तसल्ली और आपकी कुदरत देखने के लिए चाहता हूँ। क़ाला फ़ख़ुज़ अरबअतम मिन अत्तैर, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि 4 परिंदे ले लो, फ़सुरहुन्ना इलैका, चारों को पालो और पूछो, अपने पास से मानूस करो और उसके बाद में उनको ज़बह करो, क़ीमा बनाओ, हर पहाड़ के ऊपर उनके कुछ हिस्से रख दो, इधर एक का थोड़ा हिस्सा, उधर हिस्सा, इधर, 4 पहाड़ों के ऊपर, हर पहाड़ के ऊपर चारों को रख दो। ثم ادعوهن يأتينك سعيا, फिर आवाज़ दो, जिस नाम से पाले थे उस नाम से फिर आवाज़ दो। चुनाते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बह करने के बाद थोड़ा थोड़ा गोश्त रख दिया, उसके ऊपर आवाज़ दी कि मेरे पास आओ, सब परिंदे उठकर आने लगे उनके पास। मदउन यातीनक सआया, वालम अल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला ग़ालिब हैं, हिकमत वाले हैं। दुनिया के अंदर मुजाहरे नहीं फरमा रहे हैं, हिकमत है उनकी, लेकिन अल्लाह को इस पर कुदरत है, पूरी कामिल कुदरत वाले हैं। फिर उसके बाद में हक तआला शानहू ने इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की बड़ी अहमियत को यहाँ बयान फरमाया है। सूरह बकरा की आखिर आयतों में अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना, एक एक दाना भी, उसकी बड़ी अहमियत है। एक दाना चाहे चावल का हो, चाहे गल्ले का, किसी भी किस्म का हो, उसकी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है, कमसिल हब्बतिन अम्बत सबा सनाबिल, एक दाना हो तो 7 बालियाँ लाता है, हर बाली में 100 दाने हो जाते हैं, तो 7 बालियों के 700 दाने हो गए। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, जो आदमी इखलास के साथ देगा अल्लाह उसको मज़ीद अता फरमाते हैं। तो 1 रुपये का सवाब अल्लाह के यहाँ उसूली एतबार से 700 के बराबर है। मज़ीद अखलास हो तो अल्लाह उसको जितना देंगे अल्लाह ही जानते हैं कितना देने वाले हैं, इसलिए बड़ी अहमियत है। बिलखसूस रमज़ान मुबारक के अंदर एहतमाम से खर्च करना चाहिए, सदका खैरात। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जिस तरीके से एक छोड़ी हुई हवा होती है, हवा की जो अनलिमिटेड हवा हो जिसका कोई पुरसाने हाल ना हो, छोड़ दी जाए किसी मुल्क के अंदर, तो नबी करीम बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है कि रमज़ान मुबारक के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका और खैरात में छोड़ी हुई हवा से भी ज़्यादा खैरात करने वाले हो जाते, इसको खर्च कर दिया, उधर खर्च कर दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, मुस्तकिल खर्च करते रहते हैं, कर रिहिल मुरसला। तो इसलिए एहतमाम करना चाहिए, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सूरह बकरा की आखिर आयतों की बड़ी अहमियत है, इसको पढ़ना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि बहुत ही महरूम होगा वो शख्स जो इन आयतों को रोज़ाना पढ़े बगैर सो जाता होगा। ये अर्श के ख़जाने में से है, तो अर्श के ख़जाने को आदमी लिए बगैर सो जाए ये मोमिन का काम नहीं हो सकता। भाई 2 मिनट लगे, 2 मिनट भी नहीं लगते, 1 मिनट के अंदर ये दोनों आयतें हो जाती है, इसलिए रोज़ाना पढ़ करके सोना चाहिए, बड़ी अहम आयतें हैं ये। सूरह आले इमरान, आले इमरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फैमिली, इमरान उनके नाना का नाम है, तो फैमिली ऑफ इमरान, आले इमरान का मतलब यही बनता है। ईसाई लोग यहाँ जब सुनते हैं ये कि ईसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत मरियम का इसमें पूरा तज़किरा है, दंग रह जाते हैं कि हमारे मैरी का इसमें ज़िक्र है, जीसस का इसमें ज़िक्र है। इतना तफसील से तज़किर आया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का, उनके नाना का, उनकी कफालत का, हज़रत मरियम का, कि किस तरीके से उनकी वलादत हुई, कैसे अल्लाह पाक ने हिफाजत फरमाया। हज़रत मरियम की वालिदा ने पहले तो मन्नत ये मानी थी कि परवरदिगार आप मुझे औलाद अता करेंगे, बेटा होगा तो मैं आपके घर के लिए वक्फ़ कर दूँगी। पहले भी ये नीयतें होती रही हैं कि आदमी ये नियत कर ले कि भाई मेरी औलाद है, एक लड़के को बना दिया डॉक्टर, एक को इंजीनियर, एक को फला, एक को फला, एक बंदे को, एक अपनी औलाद में से एक लड़के को अल्लाह के दीन का खादिम बनाना चाहिए, एक पालना पोसना, खाएगा पिएगा कमाएगा कैसे, तो इसका इंतज़ाम खुद ही कर लो। एक बच्चे की जिम्मेदारी कम से कम उसके लिए दुकान का इंतज़ाम कर लो, बिजनेस का इंतज़ाम करके उसके लिए दे दो आप, बाकी ये कि दीन की खिदमत के लिए उसको वक्फ कर दो। ऐसा होता रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। इसी वजह से ये जो मदारिस का निज़ाम है, एक बच्चे को कम से कम आप हाफिज़ बना दो, आलिम बना दो, दीन के लिए वक्फ कर दो, मुफ्ती बना दो उसको, वो दीन के कामों में मुस्तकिल रहेगा, वो आपके लिए सदक़े जारिया बन जाएगा, आपके पूरे ख़ानदान के लिए सिफारिश का ज़रिया बन जाएगा। नीयत ये होनी चाहिए, जो नीयत करेगा अल्लाह पाक रास्ते खोलते हैं। अब यहाँ हज़रत मरियम की वालिदा ने नीयत मानी थी कि लड़का होगा तो मैं वक्फ़ करूँगी, लड़की हो गई। लड़की होने के बाद अल्लाह से कहने लगी, या परवरदिगार मैं तो ये नीयत मान के रखी थी कि लड़का होगा तो दूँगी, अब क्या करूँ। अल्लाह ने फरमाया कि लड़की को ही हमने कबूल कर लिया, उसको ही लाके दे दो। चुनाचे उन्होंने पहुँचा दिया वहाँ बैतुलमक़दस के अंदर। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, वालिद का इंतकाल हो चुका था, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू थे, उन्होंने कफालत में ले लिया। कफालत का भी लंबा चौड़ा वाक़िया है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनको पालते थे, पूछते थे, खिदमत करते थे, उनको ज़िम्मेदारी से निभाते थे पूरी। तो उस हज़रत ज़करिया, अजीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम की खसूसियात ये रखी थी, बहुत ही आबिदा ज़ाहिदा थी, बहुत इबादत में रहते थे मुस्तकिल। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी उनके पास जाते थे, नए फ्रूट है, फल है रखे हुए, कहाँ से आए, बोलते थे कि अल्लाह के पास। मौसमी फल भी नहीं होते थे, बेमौसम के फल फ्रेश रखे हुए होते थे और अल्लाह के पास से आ जाते थे। तो ये करामत थी उनकी, कुरान पाक में उसका तذکرہ है हज़रत मरियम की करामत का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कबूल फरमाया, फिर उनकी नस्ल में से अल्लाह तबारक व तआला ने एक पैगंबर को पैदा फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नज़र क्या मानी थी उन्होंने, उनकी वालिदा ने, कि मैं अपने लड़के को आपकी राह में वक्फ़ करूँगी। लड़की हुई, अल्लाह ने कहा कि उसी को हम कबूल करते हैं, और ऐसा कबूल किया कि उनकी नस्ल से पैगंबर पैदा हुए। आदमी अगर नियत करे तो अल्लाह तबारक व तआला असबाब खोलते हैं, दरवाजे बनाते हैं, रास्ते खोल देते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, नियत सही हो, अल्लाह से मांगा जाए। ये चीज़ें देख करके हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी औलाद मांगी अपने लिए। परवरदिगार जब मरियम को बेमौसम के फल मिल सकते हैं तो मेरी हड्डियाँ अगरचे के कमज़ोर हो गई हो, मेरी बीवी अगरचे के बांझ हो गई हो, औलाद चाहिए, क्योंकि आप देने पर कुदरत रखते हैं। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ भी कबूल फरमाई और उनको भी औलाद अता फरमाई। तो रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ये दुआ है, रब्बी हबली मिन अस्सालिहीन है, और इसी तरीके से फबशरनाहु बिग़ुलामिन हलीम है। ये जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, हज़रत ज़करिया की दुआ, जिनको औलाद नहीं होती है, ये हज़रात ख़ास तौर पर इन दुआओं का अहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, उलमा ने फरमाया कि मुजर्रब है ये दुआएँ, पैगम्बरों की दुआएँ हैं और अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। तो कसरत से दिल लगा करके अगर पढ़े आदमी और याद करते रहे अल्लाह को, तो ज़रूर औलाद होगी। इसके लिए अहतमाम करना चाहिए जिन हज़रात को औलाद नहीं है। सूरे आले इमरान के बाद, वक्त नहीं है उतना, सूरे आले इमरान में ग़ज़वा बदर का भी मशहूर वाक़िया है, लेकिन यह कि तफसील हो जाएगी उसकी। सूरे निसा भी आज शुरू हुआ है, पारे 4 के अंदर, उसमें से एक अहम मज़मून सुना देता हूँ आपको। सूरे निसा के अंदर हक तआला शानहू ने हिस्से बयान फरमाए हैं कि पहले हिस्से मुतय्यन नहीं थे मीरास के, फिर उसके बाद में मर्द को कितना मिलना है, औरत को कितना मिलना है, बाप को कितना हिस्सा है, बीवी को कितना हिस्सा है, शौहर को कितना हिस्सा है, सारे हिस्सों की यहाँ पर जो है तफसील बयान की गई है। उसूली तौर पर बास चीज़ें वो है जो गैर मुस्लिमों की जानिब से भी और ख़ुद मुसलमानों के जहनों में भी आती है, कि अल्लाह ताला ने यहाँ ये बयान फरमाया है कि मर्द आदमी को औरत का डबल मिलेगा, औरत को जितना हिस्सा है मर्द आदमी को उसका डबल मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर दो बेटे हैं किसी के पास में, एक बेटी है, या यूँ कह लीजिए दो बेटियाँ हैं दो बेटे हैं, तो कितना मिलना चाहिए, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए कितना। तो शरी उसूल ये है, हर बेटे को बेटी का डबल मिलेगा, हर बेटे को। जैसे मिसाल के तौर पर 40 हिस्से हैं, 40 हिस्सों में से हर बेटी को 5-5 हिस्से मिलेंगे, हर बेटे को 10-10 हिस्से मिलेगा, या यूँ 40 अगर हो गए तो बढ़ जाएगा ये हिसाब, 30 कर लो इसका। 30 हिस्सों में से मिसाल के तौर पर दो बेटियाँ हैं और दो बेटे हैं, तो हर लड़के को 10-10 मिलेंगे और हर लड़की को 5-5 मिलेंगे, ये उसूल है। ऐसा क्यों है भाई, औरत को ना कम क्यों कम कर दिया गया है, हिस्सा ज़्यादा क्यों नहीं रखा गया है, बड़ी हिकमत है उसके अंदर। एक अहम हिकमत ये है, शरीयत मुतहरा के अंदर पालने की, पोसने की, नफ़े की, घर की, छत की, कमाई की, दमाई की, इंतज़ाम करने की पूरी जिम्मेदारी मर्द आदमी के ऊपर है, औरत को रत्ती बराबर भी नहीं है। भाई घर को कमा के देना किसका काम है, मर्द आदमी का। औरत के लिए छत का इंतज़ाम करना किसका काम है, मर्द आदमी का। नफ़े का इंतज़ाम हर मर्द आदमी का, कपड़ों का इंतज़ाम मर्द आदमी का। औरत को क्या करना है, औरत को कुछ भी नहीं करना है, वो लेती है शौहर का भी शौहर मरने पर, बाप मरने पर बाप का भी लेती है, माँ मरने पर माँ का भी लेती है, खर्च क्या करना है उसको, खर्च कहीं भी नहीं करना है। तो इसलिए शरीयत मुतहरा ने जब जिम्मेदारी कुछ भी नहीं दी है, हिस्सा भी कम रखा है, मर्द का काम क्या है, हर एक को संभालना है, भाई बेटों को भी पालो, बेटियों को भी पालो, बीवी की भी पालो, ज़रूरत पड़े तो माँ बाप को भी पालो। तो पालने पोसने की जिम्मेदारी, तरबियत, उनकी तरबियत की जिम्मेदारी, ज़रूरियात की जिम्मेदारी मर्द आदमी के ऊपर है, इसलिए अल्लाह पाक ने ये डबल का इंतज़ाम रखा हुआ है मर्दों के लिए, ये उसूली बात है। दूसरी अहम बात यह है कि इस ज़माने के अंदर आम तौर पर एक गलतफहमी ये होती है कि शादी कर देने के बाद लड़कियों की जानिब से आम बहुत सारे हवाल हमारे सामने इस किस्म के आए हैं, मसले के तौर पर आते रहते हैं शरिया बोर्ड के अंदर यहाँ, वो ये कि जब बड़े भाई ने, मिसाल के तौर पर बाप का इंतकाल हो गया, भाई ने शादी कर दी अपनी बहन की, अब उसके बाद में बाप की जो प्रॉपर्टी है या जायदाद है वगैरह वगैरह, उसमें से ये बोल करके ख़त्म कर दिया जाता है कि आपको आपका हिस्सा दे दिए, शादी कर दिए ना, काफ़ी है, ये काफ़ी नहीं होता है भाई। शादी करे वो तो आपकी ज़िम्मेदारी है, महल्ले वाले थोड़ी शादी करेंगे तुम्हारी बहन की, बड़ा भाई जताता है कि मैं शादी करा तुम्हारी, तुम नहीं करेंगे तो महल्ले वाले थोड़े ही करेंगे, तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है ना भाई, भाई मेरी बहन की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, बाप नहीं है तो लोग ये कहते हैं कि मैं शादी करा, तो तुम्ही क्यों शादी करना है, मर्द किस बात के है तुम फिर। तो इसलिए इस बात को जहन में रखना चाहिए कि मर्द की ज़िम्मेदारी है अपने बहनों को संभालना वालिद के जाने के बाद, अगर उनको हिस्सा देना है तो देना पड़ेगा, जायदाद में भी उनका हिस्सा है, प्रॉपर्टी में भी उनका हिस्सा है, किरायों में भी उनका हिस्सा है, बाप को जितना हिस्सा मिलता है, बाप का जितना मीरास है, सबके अंदर तकसीम होगी, अगर चाहे आपने शादी कर दी हो, शादी करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, हिस्सा देना भी आपकी ज़िम्मेदारी है ख़ातून को। इसमें बहुत कोताही होती है, कल क़ियामत के दिन एक बालिश भी अगर कोई दुनिया के अंदर किसी के ज़मीन हड़प लेता है, कल क़ियामत के दिन सातों ज़मीन सातों आसमान गले में उसके डाल दिए जाएंगे, इतनी बड़ी वईद है, सातों आसमानों का बोझ, सातों ज़मीनों का बोझ लेकर के जहन्नम में पड़ा रहेगा वो, इसलिए इस बारे में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह पाक सही इल्म अमल नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।